पृष्ठ संख्या 199 अध्याय 11 बंगाल और महाराष्ट्र के सुधारक। उस विशाल इलाके के बाहर जहां हिंदी या हिंदी की कुछ बोलियां बोली जाती हैं, मराठी या बंगाली भाषी लोगों के बीच में उसी प्रकार के आंदोलन का उदय हुआ जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। बंगाल में मुसलमान 12वीं सदी में आए और महाराष्ट्र में उसके 100 साल के बाद आए। दोनों इलाकों में उनकी उपस्थिति ने उथल पुथल मचा दी, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक। बंगाल में मुस्लिमों के आगमन के समय बौद्ध धर्म में पूर्ण रूप से परिवर्तन हो रहा था। पुराने धर्म के बदले या तो पौराणिक हिंदू धर्म आ रहा था या बौद्ध, शैव और तांत्रिक संप्रदायों का एक विचित्र सा मिश्रण उभर रहा था। पाल और सेन शासकों के समय बिना किसी अत्याचार के साथ हिंदू धर्म का जो आगमन हुआ उससे ब्राह्मण आधिपत्य, जाति भेद और मूर्ति पूजा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। संस्कृत उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम था और स्वाभाविकतः उसने जनसाधारण की भाषा की निरुत्साहित किया, किंतु पौराणिक हिंदू धर्म के साथ साथ पुराने पंथ भी विद्यमान रहे। हालांकि वे आवरण में थे, इसलिए जब मुस्लिम विजय हुई तो उसने ब्राह्मण धर्म को निश्चित रूप से रोका, किंतु उसने आधे दबे प्राचीन ग्रंथों को प्रोत्साहित किया, सुधार के आंदोलन को उत्तेजना दी और बंगाली साहित्य की उन्नति को प्रोत्साहित किया। दिनेश चंद्र सेन बंगाली भाषा और साहित्य के महान इतिहास में बहुत खूबसूरती से बंगाली भाषा का पर मुस्लिम शासकों के संरक्षण की ऋण को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, बंगाली को जो साहित्यिक दर्जा प्राप्त हुआ वह कई प्रभावों के कारण हुआ, जिसमें से मुस्लिम विजय का प्रभाव निसंदेह सबसे प्रमुख था। यदि हिंदू राजा स्वतंत्र बने रहते तो बंगाली को शायद ही राजाओं के दरबारों में जाने का अवसर मिलता। बंगाल के मुस्लिम शासकों ने रामायण और महाभारत का संस्कृत से अपने बोलने और समझने की बंगाली भाषा बंगाली में अनुवाद करने के लिए विद्वानों को नियुक्त किया। महाभारत का अनुवाद नासिर शाह के आदेश से किया गया, जो 1325 ईस्वी तक गौड़ का शासक था। विख्यात मैथिली कवि विद्यापति ने अनेक गीत नासिर शाह को समर्पित किए और सुल्तान गयासुद्दीन की प्रशंसा की। राजा कंस, जिसने उत्तराधिकारी ने इस्लाम स्वीकार कर लिया था, रामायण के अनुयादक पृथ्वीराज का संरक्षक था। उसके दरबार पर मुस्लिम प्रभाव की छाप थी। भागवत का अनुवाद बादशाह हुसैन शाह के संरक्षण में हुआ। इसके अनुवादक मालाधार वसु को उसने गुणराज खान की पदवी दी। हुसैन शाह का सेनानायक परंगल खान ने कविंद्र परमेश्वर से महाभारत का एक और अनुवाद कराया। परंगल खान के बेटे छूटी खान ने, जो चटगांव का गवर्नर था, श्री करण नंदी को महाभारत के अश्वमेध पर्व का अनुवाद करने के लिए नियुक्त किया। अलाओल नामक एक मुसलमान ने मलिक मोहम्मद जायसी के हिंदी पद्मावत का और कुछ फारसी कृतियों का अनुवाद बंगाली में किया। ऐसे ही उदाहरण कई हैं जिनमें मुसलमान बादशाहों और सरदारों ने संस्कृत और फारसी कृतियों का अनुवाद बंगाली में कराने की पहल की। और हमें यह विश्वास करना पड़ता है कि जब बंगाल के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों ने अपने दरबारों में देशज भाषा को मान्यता दी तो हिंदू राजाओं ने भी स्वाभाविकतः ऐसा ही किया। इस प्रकार मुस्लिम राजाओं के उदाहरण के अनुकरण पर हिंदू राजाओं के दरबार में बंगाली कवियों की नियुक्ति का चलन हो गया। हिंदू आबादी के साथ मुस्लिमों का संसर्ग बंगाल के हिंदू संप्रदायों के प्रारंभिक इतिहास से शुरू हुआ। पुराने धर्म के प्रतिनिधि ब्राह्मणवाद के दमन और यहाँ तक कि मुस्लिम लूटमार से प्रसन्न हुए। धर्म संप्रदाय, जो महायानवाद का संशोधित रूप था, के अनुयायी अपने पुराने उत्पीड़कों के दमन से उल्लसित हुए बिना रहे। 11वीं सदी में रमई पंडित द्वारा लिखे गए उनके पवित्र ग्रंथ शून्य पुराण में निरंजन का क्रोध शीर्षक का एक अध्याय है, जिसे स्पष्टतः 14वीं में शामिल किया गया था और जिसमें जाजपुर में मुसलमानों और ब्राह्मणों के बीच हुए संघर्ष का उल्लेख है। दिनेश चंद्र सेन इसे इस प्रकार लिखते हैं, जाजपुर और मालदा में वैदिक ब्राह्मणों के 1600 परिवार थे। 10 और 12 के समूह में एकत्र होकर उन्होंने मंत्र पढ़ते हुए और श्राप देते हुए सात धर्मियों को मार डाला, क्योंकि वे उन्हें धार्मिक शुल्क नहीं देते थे। उन्होंने वेदों से मंत्र पढ़े और ऐसा करते समय उनके मुंह से अग्नि निकली। सत धर्म के अनुयायी उन्हें देखते ही भय से कांपने लगे और धर्म की प्रार्थना की, क्योंकि इसके अलावा उन्हें इस संकट के समय कौन शरण दे सकता था। ब्राह्मण इस प्रकार सृष्टि को नष्ट करने लगे और पृथ्वी पर घोर हिंसा का कर्म करने लगे। धर्म जो वैकुंठ में रहता था यह सब देख कर बहुत दुखी हुआ। वह मुसलमान के रूप में पृथ्वी पर आया। उसने सर पर काली टोपी पहन रखी थी और उसका नाम खोदा था। निरंजन ने बहिष्ट में अवतार लिया। तभी सभी देवता एक मत थे और वे पैजामा पहने हुए थे। ब्रह्मा ने मोहम्मद के रूप में अवतार लिया, विष्णु ने पैगंबर और शिव ने आदम के रूप में अवतार लिया। गणेश गाजी के रूप में, कार्तिक काजी के रूप में आया और नारद, शेय और इंद्र मौलाना के हो गए। स्वर्ग के ऋषि फकीर हो गए। सूर्य, चंद्रमा और अन्य देवता पैदल सैनिकों के रूप में आए और ढोल बजाने लगे। देवी चंडी ने हया के रूप में अवतार लिया और पद्मावती बीबी नूर हो गई। देवताओं ने एक मन होकर जैजपुर में प्रवेश किया। उन्होंने मंदिरों और मठों को तोड़ा और घेरों घेरों चिल्लाया। धर्म के चरणों पर गिर कर रमई पंडित गाता है, ओह कितनी महान गड़बड़ी है। धर्म गाजन और बड़ा जनानी गीत में ब्राह्मणों के विरुद्ध विद्वेष और ईर्ष्या से भरे हैं और उनके बीच बीच में मुस्लिम विचार पिरोए हुए हैं। एक देहरा भंग मंदिर का विध्वंस गीत है जिसका शीर्षक है धर्म पूजा पद्धति। अब देहरा भंग के बारे में, खोल कर अपना चेहरा पश्चिम की तरफ करके पूजा करता है। कोई अल्लाह की पूजा करते हैं और कुछ अली की और अन्य लोग मसूद शाह की। मियां कोई भी जीवित वस्तु की हत्या नहीं करता और न मृत चीज को खाता है। जाति प्रथा धीरे धीरे टूट जाएगी, क्योंकि याद रखो एक हिंदू परिवार में एक मुसलमान है। खुदा रहमान ने एक बैठक बुलाई है। कौवा पूछ रहा है और धर्म यह तय कर रहा है कि खुदा कहाँ पहले पैदा हुआ। हे खुदा, आज सभी से श्रेष्ठ हैं। मैं जिस प्रकार तुम्हारे ओठों से कुरान सुनना चाहता हूँ। निरंजन जो अल्लाह बन गया है आशीर्वाद देगा। अमीन के दुश्मन कुतुब के क्रोध का शिकार हों। बड़ा जननी इस प्रकार खत्म होता है। वीर पैगंबर हमारे शिरों पर अपने आशीर्वाद की वर्षा करें और हमारे शक्तिशाली शत्रु कुतुब के क्रोध का शिकार होकर गिर कर मर जाएं। इस प्रकार रमई पंडित ने केवल घोषणा का गान किया है और वह आशा कातर है कि ईश्वर नेता को वरदान प्रदान करेगा। ह्वेन सॉन्ग के समय के समान ही पहले शिव की पूजा बंगाल के धर्म का मुख्य तत्व थी। बंगाल के शैव शासक शशांक ने बौद्धों का उत्पीड़न किया, उनके मंदिरों का विध्वंस किया और बुद्ध की मूर्ति के स्थान पर शिव की मूर्तियां स्थापित कर दी। उसके समय से शिव की पूजा पर का ज्यादा प्रचार हो गया, किंतु मुस्लिम विजय के कारण जो बदलाव हुए उससे शिव की पूजा का पतन हो गया और नए विश्वासों की वृद्धि हुई। दिनेश चंद्र सेन के शब्दों में, अपने जोरदार जीवंत धर्म के साथ मुसलमान इस समय तक बंगाल आ गए थे। उनकी कुरान में कहा गया है कि इस्लाम का ईश्वर विश्वासियों की सहायता करता है और अंधविश्वासियों का विनाश करता है। एक व्यक्तिगत ईश्वर पर इस्लाम का जो दृढ़ विश्वास था उसे इस देश में धर्म के ऐसे स्वरूपों से टक्कर लेना पड़ा जिसमें देवत्व के व्यक्तिगत तत्व मुख्य थे। इसलिए शाक्य और वैष्णव धर्म की उन्नति हुई और शैव धर्म अपने अवैयक्तिक आदर्श और रहस्यवाद के कारण, जिसमें व्यक्ति अद्वैतवाद में अपने ईश्वर के स्तर तक उठ जाता था, क्रमशः पृष्ठभूमि में चला गया, क्योंकि आम जनता उसके काल्पनिक तत्वों को समझ नहीं पाई। हिंदू धर्म और इस्लाम के आपसी समागम के परिणाम स्वरूप विचित्र प्रकार के समन्वयवादी पंथ और रिवाज पैदा हुए। हिंदू मुस्लिम धर्म स्थलों में मिठाई चढ़ाते थे और देववाणी के रूप में कुरान पढ़ते थे। बुरी आत्माओं के प्रभाव को दूर करने के लिए कुरान की प्रतियां रखते थे और मुस्लिम भोज का उत्सव मनाते थे, और मुसलमान भी ऐसा ही करते थे। इस निकट साहचर्य के कारण एक समान ईश्वर की पूजा शुरू हुई, जिसे हिंदू और मुसलमान दोनों मानते और जिसका नाम सत्यपीर था। गौड़ का बादशाह हुसैन शाह, जो इस का संस्थापक कहा जाता है, और यदि ऐसा है तो वह महान अकबर के पहली दिशा देने वाला कहा जाता है जा सकता है। किंतु इससे अधिक महत्व की बात यह थी कि चैतन्य ने जिस आंदोलन का सूत्रपात किया उस पर इस आपसी संसर्ग का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार चैतन्य के जन्म के पहले के धार्मिक जीवन को बंगाली भाषा और साहित्य के इतिहास में संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है। ब्राह्मणों की शक्ति दमनकारी हो गई थी, जाति के नियम ज्यादा कठोर हो गए थे क्योंकि कुलीनवाद बढ़ गया था, जबकि ब्राह्मणों ने धर्म के बेहतर आदर्श बनाए रखे। जाति के बंधनों के कारण व्यक्ति व्यक्ति के बीच में अंतर चौड़ा हो गया। समाज का निचला वर्ग ऊंचे वर्ग की निरंकुशता के नीचे करा रहा था। ऊंचे वर्ग ने निचले वर्ग के लिए ज्ञान के दरवाजे बंद कर रखे थे, उन्हें उच्च स्तर जीवन तक पहुंचने का भी निषेध कर दिया गया, और पौराणिक धर्म ब्राह्मणों का एकाधिकार हो गया था, जैसे कि वह बाजार की चीज हो। इस्लाम के सादे धर्म और प्रजातांत्रिक आदर्शों का समाज पर प्रभाव पड़ा और उससे ऐसे उथल पुथल हुई जिससे चैतन्य ने केंद्रीभूत किया। उनके माता पिता ब्राह्मण थे और नदिया में 1485 ईस्वी में उनका जन्म हुआ था। जब वे बच्चे थे तब ही उनके पिता की मृत्यु हो गई और तब ही उनकी मां ने उन्हें स्कूल पढ़ने के लिए भेजा। वहां वे व्याकरण और तर्क में कुशल हो गए। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया और वे 20 वर्ष की आयु में शिक्षक बन गए, किंतु बाद में वह भावना उन पर हावी हो गई जिसने कई जिज्ञासी हिंदुओं को संसार से दूर कर दिया था, और उन्होंने घर छोड़ दिया और सारे देश का उन्होंने भ्रमण किया। अपनी यात्राओं में वे साधुओं और फकीरों के संपर्क में आए। कृष्णदास द्वारा लिखी उनकी जीवनी में वृंदावन के निकट पठानों से उनकी मुलाकात का इस प्रकार वर्णन किया गया है। एक मुस्लिम जो गंभीर था और काले कपड़े पहने था और जिसे पीर कहा जाता था, चैतन्य को देखकर उसका हृदय पिघल गया। अपनी पवित्र किताब के आधार पर वह एकेश्वरवादी की बात करता था, किंतु चैतन्य ने उसका खंडन किया। चैतन्य के जीवन की ऐसी कई घटनाएं हैं जो निर्णायक रूप से यह सिद्ध करती है कि वे यवनों से बहुत प्रेम करते थे, किंतु वे यवनों से प्रेम करते थे या नहीं इसे छोड़ भी दे तो भी इसमें संदेह नहीं कि उनके उपदेशों पर यवन विचारों का प्रभाव था। उनकी मृत्यु 1533 ईस्वी में हो गई। चैतन्य के ज्ञान का सार कृष्णदास ने दो वाक्यों में दिया। यदि कोई प्राणी कृष्ण को पूछता है तो अपने गुरु की सेवा करता है तो वह माया के बंधन से मुक्त हो जाता है और कृष्ण के चरणों को प्राप्त होता है, और उन्हें और इन्हें अर्थात तृष्णाओं और जाति पर आधारित धार्मिक पद्धति को छोड़कर एक सच्चा वैष्णव असहाय होकर कृष्ण की शरण लेता है। इस प्रकार ने ब्राह्मणों के संपूर्ण कर्म कांड की पद्धति की निंदा की और हरि पर आस्था रखने का उपदेश दिया। उनके अनुसार पूजा प्रेम और भक्ति गीत और नृत्य में निहित है, जिसे परमानंद की ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि जिसमें ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। सभी लोग इस प्रकार की पूजा करने में सक्षम है, चाहे वे किसी भी जाति और किसी भी धर्म के हों। चैतन्य के शिष्यों में हिंदू समाज के निम्नतम वर्ग के लोगों और मुस्लिम भी थे। उनके तीन मुख्य शिष्य थे, रूप, सनातन और हरिदास। चैतन्य के विचारधारा से कर्ता भज संप्रदाय निकला। इस पंथ का संस्थापक एक सदगोप था, जिसका नाम राम समरण पाल था, जो कर्ता बाबा के नाम से जाना जाता था। उसका जन्म नदिया के चकदाह के पास 17वीं सदी में हुआ था। उनके जन्म के बारे में एक मुस्लिम फकीर ने भविष्यवाणी की और इसी फकीर ने उनका पालन पोषण किया। कर्ता 84 साल की आयु तक रहे और उनका निधन उनके जन्म स्थान के पास के गांव में हुआ। उन्हें अपने पीछे 22 शिष्य छोड़े, जिसमें से एक का नाम था राम दुलाल, जो इस पंथ के प्रधान थे। प्रधान के रूप में उनके उत्तराधिकारी हुए। उनमें मुस्लिम फकीर की आत्मा का अवतार हुआ था। उन्होंने पंथ का गठन किया और गीतों की एक श्रृंखला में उन्होंने उसके सिद्धांत कहे। कर्ताभज पंथ के सिद्धांत इस प्रकार हैं: एक, ईश्वर एक है, कर्ता जिसका अवतार है। दो, महाशय या आध्यात्मिक गुरु ही शिष्य का सब कुछ होना चाहिए। तीन, मंत्र या पंथ का धार्मिक सूत्र दिन में 5 बार दोहराना चाहिए और यह मुक्ति का और भौतिक समृद्धता प्राप्त करने का एक जरिया है। मांस और मदिरा से बचना चाहिए। शुक्रवार को पवित्र दिन मानना चाहिए और उसे धार्मिक ध्यान और चर्चा में बिताना चाहिए। 6. इस पंथ में ऊंची और नीची जाति का या हिंदू मुसलमान और ईसाई का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मुसलमान कई बार शिक्षक के पद पर तक पहुंचे। इस पंथ के सदस्य साल में कम से कम एक या दो बार साथ भोजन करते हैं। 7. पंथ को मानने के लिए किसी बाहरी चिन्ह की आवश्यकता नहीं। हिंदू अपना जनेऊ रख सकता है और मुसलमान को पंथ का सदस्य होने के लिए दाढ़ी साफ नहीं करना पड़ता। 8. भक्ति ही एक ऐसी धार्मिक कवायद है जो आवश्यक है। 13वीं सदी के अंत के लगभग मुस्लिम दक्षिण की विजय करने लगे। 14वीं सदी के मध्य तक उन्होंने उस पर न केवल पूरी तरह अधिकार कर लिया, बल्कि उन्होंने वहां स्वतंत्र मुस्लिम राज्य स्थापित कर लिया। दक्षिण के बहनमी शासक बंगाल के अपने समकालीन शासकों के समान अपने शासित लोगों के साहित्य और कला की उन्नति को प्रश्रय देते रहे। मराठी भाषा आदिलशाही और कुतुलशाही राज्यों के कार्यों में इस्तेमाल होती रही और मराठों को राजस्व अधिकारियों और यहां तक सैनिक अधिकारियों के रूप में भी नियुक्त किया गया। कुतुब शाह संस्कृति के संरक्षक था और स्वयं अच्छे कवि था और उसने दक्षिणी भाषा में खूब लिखा, जो हिंदी और फारसी का मिश्रण थी। हिंदुओं और मुसलमानों के संसर्ग से महाराष्ट्र में वैसी संस्कृति विकसित हुई जैसी कि हिंदुस्तान और बंगाल में हुई। मराठी संतों और भजन गायकों ने दोनों धर्मों के संश्लेषण का वही काम किया जैसा कि कबीर साहब ने और नानक ने उत्तर में किया था। राणा डे इस आंदोलन के प्रारंभ का वर्णन इस प्रकार करते हैं: मुसलमानों के एकेश्वरवादी धर्म की कठोरता की छाप इन संतों के मस्तिष्क पर गहराई से पड़ी। दत्तात्रेय या हिंदू त्रिमूर्ति के अवतार के पूजकों ने अपने देवता को बहुधा मुस्लिम फकीर के कपड़े पहनाते थे। इसी प्रभाव ने महाराष्ट्र के लोक मानस पर गहरा प्रभाव डाला और वहां ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों उपदेशक लोगों के से कहते थे कि राम और रहीम को एक मानना चाहिए और औपचारिक कर्मकांड तथा जाति भेद के बंधनों से अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करना चाहिए और मानव मात्र के प्रति प्रेम और ईश्वर के प्रति विश्वास में एक हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र में धार्मिक उथल पुथल का इतिहास ज्ञानेश्वर के समय तक पीछे जाता है, जिन्होंने 1290 ईस्वी में भगवत गीता की मराठी टीका पूरी की। महाराष्ट्र की भाषा और चिंतन पर ज्ञानेश्वर का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। किंतु पहला संत जिसने इस धर्म की आस्था को बदल दिया और एक संक्षिप्त धर्म के पुरोहितवादी अनुष्ठानों से लोगों के मस्तिष्क को बदलकर स्वतंत्रता और प्रेम की ओर कर दिया, वह व्यक्ति नामदेव था। उन्हें महाराष्ट्र, हिंदुस्तान, राजपुताना और पंजाब के प्रत्येक संत के द्वारा भक्तों की लंबी सूची में एक महान ऐतिहासिक नाम के रूप में याद किया जाता है। परंपरा के अनुसार उनकी जन्मतिथि 1270 ईस्वी है, किंतु भंडारकर ठोस कारणों के कारण उनका जन्म 14वीं सदी का बताते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति भीमा नदी के तट पर पंढरपुर में विठोबा की मूर्ति के आसपास केंद्रित है, किंतु यद्यपि यह भक्ति एक विशेष मंदिर और एक विशेष मूर्ति से संबद्ध है, वह चरित्र में मूर्ति पूजक सचमुच ही नहीं थी। विठोबा एक प्रतीक थे और एक रूढ़ी थे, किंतु मूर्ति नहीं थे। इस प्रकार महाराष्ट्र में कृष्ण मार्गीय धर्म की विशेषताएं उत्तर प्रगतिशील सुधारकों की भक्ति से कदापि अलग भिन्न नहीं था। राणा डे ने संक्षेप में उसके जो परिणाम बताए हैं वे हैं: देश साहित्य का विकास, जाति प्रथा में संशोधन, पारिवारिक जीवन को मान्यता, महिलाओं की स्थिति को ऊंचाई देना, मानवता और सहिष्णुता का विस्तार, इस्लाम के साथ आंशिक सद्भाव, कर्मकांड और उत्सव का महत्व कम होना, तीर्थ यात्रा और उपवास, अध्ययन और ध्यान, प्रेम और विश्वास की पूजा, बहुदेववाद की ज्यादतियों को सीमित करना और चिंतन और कर्म दोनों के स्तर पर राष्ट्र का उत्थान। नामदेव खेचर के शिष्य थे, जो निश्चित ही मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उन्हें उनके गुरु के नीचे लिखे निर्देश दिए, पत्थर का देवता कभी नहीं बोलता, फिर वह कैसे वह सांसारिक लोगों के रोगों को दूर करेगा। पत्थर की मूर्ति को देवता माना जाता है, किंतु सच्चा ईश्वर तो एकदम भिन्न है। यदि पत्थर की मूर्ति की इच्छाओं को पूरा करती है तो चोट मारने पर वह क्यों टूट जाती है। जो लोग पत्थर से बने देवता की पूजा करते हैं वे अपनी मूर्खता से सब कुछ खो देते हैं। जो यह कहते या सुनते हैं कि पत्थर का देवता अपने भक्तों से बात करता है तो वे दोनों ही मूर्ख हैं। जो ऐसे देवता की महानता का बखान करते हैं जो खुद को उसका भक्त कहते हैं, उन्हें उन लोगों को निरर्थक मानना चाहिए और उनके शब्दों को कान से नहीं सुनना चाहिए। यदि पत्थर के तराशने पर देवता बनता है तो कई साल तक बड़ी फिक्र से उसकी पूजा की जाती है, तो क्या वह किसी भी काम का होगा। इन सभी बातों के बारे में अपने मन में विचार करो। पवित्र स्थल चाहे छोटा हो या बड़ा, वहां देवता नहीं बल्कि पत्थर है या पानी। देवदासी गांव में निर्देश दिया गया कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां ईश्वर नहीं है। नामा को अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन हुए और इस प्रकार खेचर ने उन्हें आशीर्वाद दिया। नामदेव इस तरह धर्म के बाहरी कृत्यों की अकुशलता की पोल खोलते हैं। सपत, उपवास और दरिद्र के रूप में रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है। न यह जरूरी है कि तुम तीर्थ यात्रा करो। अपने हृदय में सतर्क रहो और सदैव हरि का नाम भजो। भोजन छोड़ने और पानी छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपना ध्यान हरि के चरणों में लगाओ। योग, बलि या कामना की चीजें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हरि के प्रति लगन की कामना का अनुभव करो। नीचे लिखा भजन उस लक्ष्य का वर्णन करता है जिसे प्राप्त करने की नामा का इच्छा था। अब मैं अपने सभी दिनों को आनंद से भर दूंगा, पूरे मन से विट्ठल के से संलग्न हो जाऊंगा और सिर्फ ईश्वर से सभी दान और देखभाल को वह बुहार कर एकदम दूर कर दूंगा और मैं माया के बंधन को चीर कर अलग कर दूंगा और वह मेरा बहुत प्रिय है और केवल वह ही, क्योंकि मेरे सभी बोझ को वह ले लेगा और अपने ऊपर रख लेगा। संसार का सारा दुख पूर्णतः समाप्त हो जाएगा और सभी ओर शांति का साम्राज्य हो जाएगा, क्योंकि सांसारिक देखभाल के सभी बंधनों को वह तोड़ देगा और माया के बंधन को वह चीर कर अलग कर देगा। अब मुझे अपनी सभी मूर्खताओं से मुक्त हो जाने दो, केवल विट्ठल में ही शांति है। नामदेव ऐसे अनेक श्रेष्ठ जनों के नेता थे जो उनके द्वारा सौंपी गई परंपरा को आगे ले गए। इनमें से कुछ महिलाएं थीं, कुछ हिंदू धर्म में दीक्षित हुए मुस्लिम थे और उनमें से करीब आधे ब्राह्मण थे, जबकि बाकी अन्य जातियों में से थे। मराठा कुनबी, दर्जी, बागवान, कुम्भार, सुनार, प्रायश्चित कर रही वेश्याएं और दास कन्याएं थीं और यहाँ तक कि अछूत महार भी थे। नामदेव की भावनाएं उनके उपदेशों में निहित थी। पंढरपुर के मंदिर में प्रवेश करने पर चोखामेला महार ने ब्राह्मण पुजारी की डांट के उत्तर में ऐसा ही कहा। उसने कहा, यदि भक्ति या आस्था नहीं है तो ऊंची जाति में जन्म लेने से क्या होता है, कर्म कांड या ज्ञान से क्या होता है। आदमी चाहे निची जाति का हो, तथापि यदि वह अपने हृदय से आस्थावान है और ईश्वर से प्रेम करता है और सभी जीवों को अपने जैसा ही मानता है और अपने और अन्य लोगों के बच्चों में अंतर नहीं करता और सत्य बोलता है, तो उसकी जाति शुद्ध है और ईश्वर उससे प्रसन्न होता है। यदि किसी व्यक्ति के हृदय में ईश्वर के प्रति आस्था और मनुष्य मात्र के लिए प्रेम हो, तो उसकी जाति कभी मत पूछो। ईश्वर अपने बच्चों में प्रेम और भक्ति चाहता है और वह जाति की चिंता नहीं करता। बहिराम भट्ट ने उस सत्य को पाने के लिए दो बार अपना धर्म बदला जो उसके हृदय की चाह का तुष्टि दे। धर्म के इस बदलने को हिंदू और मुसलमान दोनों गलत मानते थे, किंतु उसने कहा कि न तो वह हिंदू है और न मुसलमान। शेख मोहम्मद के जो अनुयायी भक्त हो गए, वे रमजान और एकादशी का व्रत दोनों करते हैं और मक्का और पंढरपुर दोनों की तीर्थ यात्रा करते हैं। तुकाराम नामदेव के बाद महानतम मराठी संत थे और महाराष्ट्र पर उनका व्यापक प्रभाव था। वे उतने ही सारग्रही थे, वे शिवाजी के समकालीन थे और उस भावना के प्रेरक थे जिसने मराठों को समान लक्ष्य और आकांक्षाओं के लिए एक बनाया। उनका जन्म पूना के पास देहू में 1608 ईस्वी में हुआ था। वे जाति के मराठा थे और ऐसे परिवार से थे जो कई पीढ़ियों से विठोवा की उपासक था। उनके पिता एक छोटे से दुकानदार थे और उन्होंने अपना धंधा उन्हें तभी सौंप दिया था जब वे 13 साल के बालक थे। अपने पिता के निधन के 4 साल के बाद धंधा बिगड़ गया और उसे अपनी एक पत्नी की सहायता से उन्होंने ठीक किया, किंतु उनकी समृद्धि ज्यादा दिन तक नहीं रही। उन्होंने एक जरूरतमंद आदमी को अपना पैसा दे दिया जिसे कैद का अंदेशा था और जो दिवालिया हो गया था। इसके बाद अकाल पड़ा और उनकी एक पत्नी भूख से मर गई। तुकाराम सांसारिक जीवन में से बहुत हताश हो गए और उन्होंने अपना धंधा छोड़ दिया और पूर्ण रूप से स्वयं को ध्यान और भक्ति में लगा दिया। पवित्रता और सेवा के उनके जीवन से वे सर्वत्र लोगों के लोकप्रिय हो गए, किंतु ब्राह्मणों को उनकी प्रसिद्धि से ईर्ष्या हुई और उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया। शिवाजी का सितारा उस समय उदय हो ही रहा था, किंतु वे उनके प्रशंसक हो गए और उन्हें धन सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। तुकाराम की शिक्षाएं उनके असंख्य अभंगों में निहित है जिनकी संख्या 5 से 8 हजार है। उस काल में भारत के लोगों के सामने धर्म से संबंधित सभी समस्याओं और पहलुओं के बारे में इन भजनों में कहा गया है। उदाहरण के लिए ईश्वर का स्वरूप, संसार और मनुष्य से उसका संबंध, उसकी कृपा, मनुष्य की नियति, साक्षात्कार का तरीका, सद्गुण स्तर, भक्ति का मार्ग, बाधाएं, पीड़ाएं, भक्त की उपलब्धियां, धार्मिक जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़ी भावनाएं, संसार और चेतना के बंधन, संतों का चरित्र, गुरु की आवश्यकता, बाहरी आडंबर के निरर्थकता, सामाजिक भेदभाव के अनौचित्य इत्यादि। तुकाराम की ईश्वर की अवधारणा कबीर के समान ही थी। वे कहते हैं, न तो उसका स्वरूप है और न नाम और न स्थान है और न घर है। हम जहाँ भी जाते हैं वे उपस्थित रहता है। विट्ठल हमारी माँ और बहन है, वह न तो स्वरूप जानता है और न ही रूप परिवर्तन जानता है। वह चल अचल संसार के परे है। वह न तो निर्गुण और न सगुण है। उसे कौन जान सकता है? तुका कहता है कि जिसको उस पर विश्वास नहीं है उसकी तरफ वह नहीं देखेगा। ईश्वर की सर्वव्यापकता और जीवन की पवित्रता और सभी कर्मों को उसे समर्पित करने के बारे में नीचे भजन में शिक्षा दी गई है। हम आपके पदचिन्हों को हर जगह देखते हैं। रूप, नाम और आकार ये सभी बादल के रंग वाले हैं। यदि हम भूमि पर लेट जाएं तो वह और कुछ नहीं ईश्वर की मूर्ति के खड़े होने का स्थान है। चूंकि हमारा मस्तिष्क आपके प्रेम से पूरी तरह परिपूर्ण है, हमारे लिए हर क्षण शुभ है। हे ईश्वर, आप हमारे लिए सब ही कुछ हैं। हमारा जीवन, हमारी आशा, हमारा कर्म है। जब हम अपना भोजन पूरा करते हैं और सुपारी खाते हैं, वह आपके सम्मान के प्रति समर्पित है। जब हम चलते हैं तो आपकी मूर्ति के आसपास चलते हैं। नींद में आपके सम्मुख दंडवत रहते हैं, जैसे धरती पर एक डंडा पड़ा हो। जब हम बात करने के लोगों से मिलते हैं तो हम हरेक पे आपकी छाया देखते हैं। झीले, नदियां और कुएं हमारे लिए पवित्र स्थल हैं और गंगा जल से परिपूर्ण है। राजमहल, बहुमंजिली इमारतें और फूस की झोपड़ियां सभी ईश्वर के मंदिर हैं। जो भी ध्वनि हम सुनते हैं वह हरि का नाम है। चाहे जो भी शब्द उच्चरित किए गए हों, तुका कहता है कि हम विष्णु के सेवक उसके प्रेम में डूबे हुए हैं। ईश्वर की कृपा के बारे में इस प्रकार कहा गया है कि उन्हें किसी चीज के लिए ईश्वर से कहने की जरूरत नहीं है और वह उनकी सेवा करने के लिए दौड़ कर आता है और एक ही बुलावे पर आप अपने पूजकों के तरफ खींचे चले जाते हैं। तुका कहता है कि आपकी कृपा इतनी निश्चित है कि आप कभी विलंब नहीं करते। कई अभंगों में वे सच्ची पूजा के स्वरूप का संकेत देते हैं और समारोहों का, वैदिक बलि देने का, तीर्थ यात्रा करने का, पत्थर पूजने का, संतों का वेश धारण करने का, उपवास का और संयम का निषेध करते हैं। वे मानव जीवन के लक्ष्य का इस प्रकार वर्णन करते हैं। शांति का जीवन का शिखर है, इसके अतिरिक्त सभी आनंद पीड़ा है। यह बात गांठ बांध लो, कितना भी ज्वार आए तुम किनारा प्राप्त कर लोगे। जब लोगों को क्रोध आता है और दुख से पीड़ित होते हैं और परेशानी में होते हैं, शांति आती है और फिर तुका जानता है कि ज्वर तिरोहित हो जाता है। हिंदू और मुस्लिम पंथों में समन्वय स्थापित करने की तुकाराम की कोशिश नीचे लिखे भजन से स्पष्ट है। अल्लाह जो चाहता है वह पूरा हो जाता है। ए बाबा, ईश्वर सबका स्वामी है। मवेशियां और मित्र, बगीचे और चीजें सभी चले जाते हैं। ऐ मेरे मित्र, मेरा मन मेरे साहिब में है जो सर्जक है। मैं घोड़े की पीठ पर सवार होता हूँ और खुद घुड़सवार हो जाता हूँ। हे मित्र, अल्लाह का जिक्र करो जो सभी के वेश में है। तू का कहता है कि जो व्यक्ति इसे समझता है वह दरवेश हो जाता है। और महान नामों में पहला नाम अल्लाह का है, उसे दोहराना कभी मत भूलो। अल्लाह निश्चित रूप से एक है, नबी भी निश्चित रूप से एक है। हे मित्र, वहाँ तुम भी एक हो, तुम भी एक हो, तुम भी एक हो। वहाँ न तो मैं हूँ और न तो तुम हो।